गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बन चारी यमुना तीरा बन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन रजन रंजन यशोदानंदन ब्रजन रंजन यमुना तीरा बन चारी यमुना तीरा बन चारी परमहंस परिव्राज प्रचारी अष्टोत्तर श्री श्रीमदिष्टवाइंद्रि अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी लील प्रभुपाद की जय नित्य लीला प्रवचिस्कोन सामुद्राचार्य श्री होलवर्ण जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय श्री श्री राधा पार्थ सरथी ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री श्री गौणताय भगवान की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय समवेत भक्त वृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस्कॉन वर्धमन आचार्य वृंद की जय गौर प्रेमानंद ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा हरे कृष्णा। तो चूंकि आज जन्माष्टमी का उत्सव बहुत निकट आ रहा है तो हम चर्चा करेंगे भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव की। श्रीमद् भागवत के दसवें स्कंद के पांचवें अध्याय में नंद महाराज के उत्सव का वर्णन है। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, कंस के कारागार में। आधी रात अर्धरात्रि को, तो किसी को पता नहीं चला। तो कृष्ण के जन्म उत्सव की कोई बात ही नहीं जानता था, कुछ भी नहीं पता चला कृष्ण के जन्म का किसी को। और चोरी चोरी वसुदेव जी कृष्ण को मथुरा से कहाँ ले गए, गोकुल में ले गए, है ना। लेकिन अगले दिन सवेरे उत्सव हुआ, कहाँ पर, गोकुल में, नंदोत्सव कहलाता है। इसका जो विवरण है ये श्रीमद् भागवत से मैं पढ़ रहा हूँ। नंद महाराज ने अपने नवजात शिशु का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। कृष्ण जन्म से सारे वृंदावन में अत्यधिक उल्लास था, हर व्यक्ति खुशी से फूला नहीं समा रहा था। इसलिए ब्रजराज महाराज नंद ने इस शिशु का जन्मोत्सव मनाना चाहा और उन्होंने इसे मनाया भी। इस महोत्सव में उन्होंने उपस्थित लोगों को मुहे मांगी, भेंटें दी। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं महाराज परीक्षित से, नंद महाराज अत्यंत उदार थे, अतः जब श्री कृष्ण ने उनके पुत्र रूप में जन्म लिया तो वे हर्ष के मारे फूले नहीं समाए। आप जानते हैं नंद महाराज की उम्र कितनी थी उस समय, 88 वर्ष की थी वृद्धावस्था में। उनको वृद्धावस्था में पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, बहुत यज्ञ किए, तीर्थ किए, व्रत किए पुत्र प्राप्त करने के लिए। अब सोचिए इतनी अवस्था में जब कोई पुत्र उनको प्राप्त होगा तो कितना उनको खुशी नहीं होगी। अतः स्नान द्वारा अपने को शुद्ध करके और समुचित ढंग से वस्त्र धारण करके उन्होंने वैदिक मंत्रों का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को बुलाया। जब ये योग्य ब्राह्मण शुभ वैदिक मंत्रों का पाठ कर चुके तो नंद ने अपने नवजात शिशु के जात कर्म को विधिवत संपन्न किए जाने की व्यवस्था की। उन्होंने देवताओं की पूजा का भी प्रबंध किया और पितरों की, पितृ देवार्चनम, पितृ पूजा देव पूजा का भी प्रबंध किया। नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता नादो महामन आहुए विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुतीरलंकृता वाचे त्वा स्वस्यैनं जात कर्मात्मजस्य मे कार्यामास विधिवन् पितृदेवार्चनम तथा। तात्पर्य में लिखा है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने नंदस्तु शब्दों के महत्व की व्याख्या की है। इसमें सुखदेव गोस्वामी के शब्द क्या है, नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने, आत्मज का मतलब जानते क्या है, कृष्ण को कहा गया है नंद आत्मज, है ना। आत्मा का एक अर्थ शरीर भी होता है और जा का मतलब जन्म लेने वाला, जिसने नंद के शरीर से जन्म लिया, यानी कृष्ण को नंद का पुत्र ही मानता है। सुखदेव गोस्वामी का इशारा है कि कृष्ण नंद के ही पुत्र हैं। इसमें बड़ा रहस्य है, नंद के पुत्र कैसे हैं, वो तो वसुदेव के पुत्र हैं। वसुदेव के शरीर में आए थे कृष्ण, और जब वसुदेव के शरीर में आए थे कृष्ण तो वसुदेव जी का शरीर सूर्य के समान तेजस्वी हो गया था, और जब वसुदेव जी के शरीर से देवकी के शरीर में कृष्ण आए तो देवकी का शरीर तेजस्वी हो गया, कारागार का अंधकार दूर हो रहा था। लेकिन यहाँ पर सुखदेव जी कह रहे हैं आत्मज, नंद के आत्मज, नंद के शरीर से पैदा हुए कृष्ण है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती का कहना है कि तू शब्द का प्रयोग किसी विशिष्ट प्रयोजन से किया गया है। तू, यद्यपि कृष्ण देव के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए किंतु वसुदेव और देव की इस पुत्र के जन्म का आनंद नहीं उठा पाए, उल्टे इसका आनंद लिया नंद महाराज ने।
जैसा कि यहाँ बताया गया है नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादु महामना। तो इससे क्या इशारा मिलता है कि नंद महाराज की तपस्या ज्यादा बड़ी है। वसुदेव देव जी ने तपस्या की जिससे कृष्ण उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए, लेकिन नंद यशोदा की तपस्या उनसे ज्यादा है। क्यों, कौन बताएगा? नंद यशोदा की तपस्या ज्यादा है क्योंकि कृष्ण के जन्म का आनंद नंद महाराज मना रहे हैं, इस कारण से नंद की तपस्या ज्यादा है। जब नंद महाराज वसुदेव से मिले तो वसुदेव ने यह प्रकट नहीं किया कि तुम्हारा पुत्र कृष्ण वास्तव में तो मेरा पुत्र है। नंद जी वसुदेव जी से मिलने गए थे मथुरा कृष्ण के जन्म के बाद, कृष्ण के जन्म के 3-4 दिन के बाद नंद जी गए थे। वसुदेव जी से मिलने नहीं गए थे क्योंकि वसुदेव जी से मिलना बड़ा खतरनाक था। वसुदेव जी से मिलना बड़ा खतरनाक था क्योंकि कंस के जासूस वसुदेव जी के घर के चारों तरफ घूमते रहते थे कि कौन बात करता है वसुदेव से, क्या बात करता है वसुदेव से। क्यों? क्योंकि कंस को मारने वाला जो शत्रु है वो वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र होगा, इसलिए नंद की बहुत कंस की बहुत निगरानी थी वसुदेव के ऊपर। तो नंद जी ब्रज से गए थे मथुरा, वसुदेव जी से मिलने नहीं गए थे। क्या करने गए थे, किस लिए गए थे? कंस का कर चुकाने, वार्षिक कर, साल में एक बार कर चुकाना पड़ता था नंद जी को, यानी गोरस देते थे कंस को। ब्रज भर का पूरा जितना गोरस है वो इकट्ठा करके कई बैलगाड़ियों में लाद करके और एक साल में एक बार कंस को दे आते थे। लेकिन इसी समय वो कंस को कर चुकाने गए, क्यों? कि कंस जो है किसी प्रकार का उत्पात पैदा ना करे, विशेष रूप से अभी कृष्ण का जन्म हुआ है तो कृष्ण के ऊपर कोई संकट ना आए कंस के कारण, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कंस को कर चुकता करने के लिए कृष्ण जन्म के बाद ही गए नंद महाराज। लेकिन फिर जब मौका मिला तो वसुदेव जी से मिले, तो चुपके चुपके वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी के 6 पुत्र कंस ने मार डाले थे, हालांकि कारागार से मुक्त कर दिया था कंस ने। आधी रात में जब कृष्ण का जन्म हुआ और कंस आया तो उसको पता चला कि कन्या है, और कंस ने कन्या को मार डालना चाहा तो कन्या आकाश में चली गई, और कन्या ने कहा कि तेरा शत्रु किसी और स्थान में जन्म ले चुका। तो कंस ने यह समझ करके कि मेरे शत्रु ने जो है डर करके अब देवकी से जो जन्म लेना था तो अपना प्रोग्राम बदल दिया मेरे डर के कारण, तो किसी और स्थान में उसने जन्म ले लिया है। तो वसुदेव देवकी को उसने मुक्त कर दिया कारागार से कि मेरे शत्रु ने अपना कार्यक्रम बदल दिया, जहां जन्म लेना का विचार था वहां जन्म ना लेकर के किसी और स्थान में जन्म लिया है। तो फिर वसुदेव देवकी से क्षमा मांगी, उनको कारागार से मुक्त कर दिया। लेकिन तो भी वसुदेव देवकी पूरी तरह से मुक्त नहीं थे, कंस के सब जासूस जो है ना दीवालों में भी कान लगे हुए थे कि कौन मिलता है और क्या रहस्य है वसुदेव और देवकी के बारे में, जो भी रहस्य हो कंस जानना चाहता था। तो हजारों कान और हजारों आंखें जो है वसुदेव देवकी के चारों ओर लगे हुए थे। तो नंद जी जब गए वसुदेव से मिलने के लिए तो बहुत ही संक्षिप्त बातचीत हुई उनके बीच में। वसुदेव जी ने यही कहा कि बड़े सौभाग्य से आपको वृद्धावस्था में पुत्र की प्राप्ति हुई है। वसुदेव जी ने नहीं कहा कि कृष्ण मेरा पुत्र है, मैं छोड़ के आया हूँ तुम्हारे घर में अपने पुत्र को। तो वसुदेव जी ने यह प्रकट नहीं किया, कंस के भय के कारण वसुदेव कृष्ण का जन्म नहीं मना सके, किंतु नंद महाराज ने इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाया। जात कर्म नवजात शिशु के नाल काटते समय का उत्सव है। अब एक और भी आश्चर्य की बात है, जब कृष्ण का जन्म हुआ तो रात रात में जो है वसुदेव जी कृष्ण को यशोदा की सैया में लेटा आए और कन्या को ले आए। अब नाल जो है ना, नाल तो कटा नहीं, नाल किसने काटा और इसकी किसी ने परवाह नहीं की, इसका ध्यान ही नहीं दिया कि नाल कटा है कि नहीं नाल कटा है। बालक बाहर से आया है, आसमान से आया है, कहां से आया है, इसकी किसी ने चिंता नहीं की। इस खुशी के मारे कि बच्चा जो है कहां से आया है, लेकिन खुशियां मना रहे हैं। तो इस बात के लिए अवसर ही नहीं था। इस प्रसंग में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अनेक शास्त्रों के प्रमाणों से ये सिद्ध करना चाहते हैं कि कृष्ण ने यशोदा की कोख से योग माया के पहले ही जन्म ले लिया था, इसीलिए योग माया उनकी छोटी बहन कही जाती है। भले ही नाल काटने के बारे में कुछ शंकाएं हों और भले ही कृष्ण का नाल ना काटा गया हो, किंतु जब भगवान प्रकट होते हैं तो ऐसी घटनाएं यथार्थ मानी जाती हैं। जैसे कृष्ण ब्रह्मा के नथनों से वराहदेव के रूप में प्रकट हुए तो ब्रह्मा को वराहदेव का पिता कहा जाता है। कार्यामास विधिवत शब्द भी महत्वपूर्ण है। पुत्र जन्म के हर्षातिरेक के कारण नंद महाराज ने देखा ही नहीं कि पुत्र का नाल कटा अथवा नहीं। इसमें कई रहस्य हैं। एक रहस्य यह है कि कृष्ण ने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया और यशोदा के एक पुत्र हुआ और एक पुत्री हुई। पुत्री वही थी जिसको वसुदेव जी ले गए, लेकिन उस पुत्री के पहले कृष्ण का जन्म हुआ। और ये दो बालक पैदा हुए, मथुरा में एक बालक पैदा हुआ चार भुजाओं का कंस के कारागार में, और एक बालक पैदा हुआ गोकुल में यशोदा के गर्भ से, दो भुजाओं का बालक है ना। और फिर इसमें बड़ा रहस्य है कि वो दो बालक जो है ना एक बन गए। यशोदा का जो बालक है वो वहां आकर के कंस के कारागार में जो चतुर्भुज बालक को अपने में लीन कर दिया और फिर उस बालक को जो है यशोदा का ही जो बालक था उसको ही वसुदेव जी यशोदा की सैया में फिर से लेटा देते हैं। तो कार्यामास विधिवत शब्द में महत्वपूर्ण है। पुत्र जन्म के हर्षातिरेक के कारण नंद महाराज ने देखा ही नहीं कि पुत्र का नाल कटा अथवा नहीं। इस तरह उन्होंने बड़ी ही धूमधाम से उत्सव मनाया। कुछ विद्वानों के अनुसार कृष्ण वास्तव में यशोदा के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। जो भी हो, नंद महाराज द्वारा कृष्ण के जन्म पर किया गया ये उत्सव उचित था, इसलिए ये उत्सव हर जगह क्या कहलाता है, नंदोत्सव। अब नंद महाराज ने क्या किया, उत्सव मनाया तो क्या किया। नंद महाराज ने ब्राह्मणों को वस्त्रों और रत्नों से अलंकृत 20 लाख गौएं दान दी। क्या, ध्यान दीजिए, 20 लाख गौएं ब्राह्मणों को दान दी नंद महाराज ने, और 20 लाख गौओं को भी कैसे सजाया, वस्त्रों से और रत्नों से सजा करके। 20 लाख गायें वस्त्रों से और रत्नों से सजा करके नंद महाराज ने ब्राह्मणों को दान दी। और सात पहाड़ दान दिए, तिल के सात पहाड़ दान दिए, और उनमें पहाड़ों में तिल के पहाड़ों में वस्त्रों से, सुनहरे वस्त्रों से ढके गए और रत्नों से ढके गए वो पहाड़। इस प्रकार से उन्होंने दान दिए नंद महाराज ने। इस स्नान से शरीर को शुद्ध किया और संस्कार से जन्म को शुद्ध किया, तपस्या से इंद्रियों को शुद्ध किया, पूजा से और ब्राह्मणों को दान देने से संपत्ति को शुद्ध किया, संतोष से मन को शुद्ध किया और कृष्ण भावनामृत से आत्मा को शुद्ध किया। ये उत्सव है कृष्ण के जन्म का, उत्सव इस प्रकार से मनाना चाहिए। ये कई प्रकार की शुद्धियां बताई गई हैं। इस नाम से शरीर को शुद्ध करो और संस्कार से जन्म को शुद्ध करो, तपस्या से इंद्रियों को शुद्ध करो, पूजा से और ब्राह्मणों को दान देकर के संपत्ति को शुद्ध करो, संतोष से मन को शुद्ध करो और कृष्ण भावनामृत से क्या शुद्ध करो, आत्मा को शुद्ध करो। काले निस्नाने शौचाभ्याम संस्कार सपचे जयम शुद्धं दिदाने संतुष्ट्या द्रव्यान्यात्मात्मे विद्ययाम। हाँ, नंद महाराज के गांव में लोग जानते थे कि वस्तुओं को किस तरह से शुद्ध किया जाता है, जिसके कारण वे पाप रहित जीवन बिताते थे। देखिए ये शिक्षा है, नंद महाराज के गांव में सब लोग शिक्षित थे, वैसे देखा जाए तो अशिक्षित थे बेचारे, हैं? लेकिन आजकल की शिक्षा में ये शुद्धि कुछ नहीं सिखाई जाती है, कैसे आत्मा को शुद्ध किया जाए, कैसे मन को शुद्ध किया जाए, कैसे इंद्रियों को शुद्ध किया जाए, सब अशुद्ध है, हैं? और वैसे देखने के लिए बड़े शिक्षित हैं लोग, तो क्या फायदा ऐसी शिक्षा, जिस शिक्षा से अगले जन्म में कुत्ते बिल्ली का शरीर प्राप्त हो, क्या फायदा। लेकिन जो ब्रजवासी ये शिक्षित हैं, क्योंकि वे आत्मा को शुद्ध करना जानते हैं, शरीर को शुद्ध करना जानते हैं, मन को शुद्ध करना जानते हैं, इंद्रियों को शुद्ध करना जानते हैं। ब्राह्मणों ने मंगलकारी वैदिक मंत्र पढ़े, जिनकी ध्वनि से वातावरण शुद्ध हो गया, और प्राचीन पुराणों को सुनाने वाले वाचकों ने जब पाठ किया, पुराणों का पाठ किया, गवयों ने गाया, भेरी दुंदुभी और वाद्य यंत्रों के साथ गान किया। सोमंगल्य गिरो विप्रा सूत मागध वंदिन गायका जगुर्ने दुर् भेर्यो दुंदुभयो मुहु। नंद महाराज का निवास कैसे सजा है, ये ब्रजपुर कहलाता है, ब्रजपुर। ब्रजपुर कैसे सजा है नंद महाराज का निवास, रंग बिरंगी झंडियों से और झंडों से सजा है, विभिन्न स्थानों पर नाना प्रकार के फूलों की मालाओं से सजा है, वस्त्रों और आम की पत्तियों से द्वार बनाए गए हैं, घर घर में जो है ना सजावट है, आंगन सड़कों के पास के दरवाजे और घरों के कमरों के भीतर की सारी वस्तुएं अच्छी प्रकार से झाड़ बुहार कर पानी से धोई गई हैं, घर के अंदर भी सफाई बाहर भी सफाई। ब्रजा समृष्ट संतिक्त द्वारा जिरे गृहांतर चित्र ध्वज पताका स्रंग कैल पल्लव तोरण। अब जो गोकुल के गौएं और बैल हैं वो कैसे सजे हैं, जो गौएं हैं और बैल हैं और बछड़े हैं उनके शरीर पर हल्दी और तेल के साथ लेप किया गया है, उनके मस्तकों पर मोर पंखों से सजावट की गई है और उन्हें मालाएं पहनाई गई हैं, ऊपर से वस्त्र और सुनहरे गहनों से सजाया गया है। देखा, गौएं बैल और बछड़े भी सजे हैं सुनहरे वस्त्रों से, और तेल और हल्दी मिलाकर के जो है हाथ के छाप लगाए गए हैं गौओं बछड़ों और बैलों के शरीर पर। गावो वृषा वत्सतराम हरिद्रा तैल रोषिता विचित्र धातु बरह स्रंग वस्त्र कांचन मालिना। हे राजा परीक्षित, ग्वाले खूब सजे धजे हैं, वृश्चिक वाले खूब सजे धजे हैं, क्या अत्यंत मूल्यवान गहने पहने हैं, कंचुक और पगड़ी धारण किए हैं। कंचुक जानते क्या है, कंचुक, कंचुक कमर में जो वस्त्र बांधा जाता है उसे कंचुक कहते हैं, है ना, तो बहुत ही सुनहला जो वस्त्र है कमर में बांधे हैं और पगड़ी बांधे हुए हैं, सजे खूब सजे धजे हैं, इस तरह से सज धज कर और अपने हाथों में तरह तरह की भेंटे लेकर नंद महाराज के घर में आए। महार है वस्त्राभरण कंचुकोष्मेशभूषिता गोपा समाययो राजन नानोपायन है पाणया। अब गोपियां क्या करते हैं, परम प्रसन्न है कि माता यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है। ये गोपियां कौन सी गोपियां हैं, प्रेषी गोपियां नहीं है, दो प्रकार की गोपियां हैं, एक तो माता गोपियां हैं, दूसरी प्रेसी गोपियां हैं। तो ये प्रेसी गोपियां नहीं है, हा? कृष्ण के जन्म के समय तो प्रेसी गोपियां थोड़ी, हा? वो तो वो भी जन्म ले रही हैं, जन्म लेने वाली हैं। तो ये कृष्ण की माता गोपियां हैं जो कि प्रसन्न है और माता यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है, अतः वे उपयुक्त वस्त्रों, गहनों और काजल आदि से अपने को सजाने लगी। गोप्यस्या कर्ण मुदिता यशोदाया श्रुतोद्भवम् आत्मानं भूषयान् चक्रुर् वस्त्राकल्पाञ्जनादिभिः। अब उनके जो मुख हैं, माता गोपियों के मुख हैं, कमल जैसे असाधारण सुंदर मुख हैं, उन मुखों को केसर से सजाया और नव विकसित कुमकुम से सजा करके गोपियां अपने हाथों में भेंटे लेकर माता यशोदा के घर के लिए तेजी से चली। प्राकृतिक सौंदर्य के कारण उनके नितंब बड़े बड़े थे और उनके बड़े बड़े स्तंभ तेजी से चलने के कारण हिल रहे थे। नव कुमकुम किंजल के मुख पंकज भूत यहां बलि विस्वरितम जगमो पृथुश्रोण्य चलत कुचां। गोपियों के कानों में चमचमाते रत्न जटित कुंडल थे और उनके गले में धातुओं के हार लटक रहे थे। उनके हाथ चूड़ियों से विभूषित थे, उनकी वेशभूषाएं विविध रंगों की थीं और उनके बालों में लगे फूल मार्ग पर गिर रहे थे मानो फूलों की वर्षा हो रही हो। इस प्रकार नंद महाराज के घर जाते समय गोपियां उनके कुंडल, उनके हिलते स्तन और मालाएं अति सुंदर लग रहे थे। गोपियां सुमृष्ट मणि कुंडल निष्क कंठन चित्रांबरा पति सिका च्युत माल्य वर्षा नंदालयम सबलया ब्रज तीर वेरे जुन ज्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। तात्पर्य में लिखा है कि कृष्ण का स्वागत करने के लिए महाराज नंद के घर जा रही गोपियों का वर्णन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। गोपियां सामान्य स्त्रियां नहीं थीं, अपितु वे कृष्ण की हलादरी शक्ति थीं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आनंद चिन्मय रसन प्रतिभाविताभिन ताभिर्य एव निज रूप तया कलाभिः गोलोक एव निवशन् अखिलात्मभूतौ गोविंद मादि पुरुषम तमहं भजामि चिंतामणि प्रकर तन्मसुकल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरभि रभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंद मादि पुरुषम तमहं भजामि। कृष्ण जहां भी जाते हैं गोपियों द्वारा पूजित होते हैं, इसीलिए श्रीमद् भागवत में कृष्ण का इतना विशद वर्णन हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कृष्ण का वर्णन इस प्रकार से किया है, क्या चैतन्य महाप्रभु कहना है, रम्या काच दुपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। सारी गोपियां अपनी अपनी भेंटें लेकर कृष्ण के पास जा रही थीं, क्योंकि वे भगवान की नित्य संगिनियां हैं। अब गोपियां वृंदावन में कृष्ण के आविर्भाव का समाचार पाकर इतनी अधिक प्रफुल्लित थीं। अतः न केवल नंद महाराज के ब्रज के पड़ोस में अपितु सारे ब्रह्मांड में तथा अन्य सभी ब्रह्मांडों में भगवान के शुभ आगमन पर वाद्य यंत्र बज उठे।